Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Thank you. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री गिरि गोवर्धन की जय, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय, निताय गौर प्रेमानंद समवेत भक्त वृंद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, श्री श्री गुरु गौरानंद की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशगोपिका कान्तराधाकान्त नमोऽस्तु ते। सप्तकाञ्चनगौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। कल शाम चर्चा ये चल रही थी कि इंद्रदेव को ज्ञात हुआ कि उनकी योजना असफल हो गई है पूरी तरह से, क्योंकि श्री कृष्ण ने विशेष आध्यात्मिक योग शक्ति का प्रयोग करके गोवर्धन पर्वत को ही धारण कर लिया था और सारे ब्रजवासी सुरक्षित और आनंदित अवस्था में लगातार 7 दिन और 7 रात उस गोवर्धन पर्वत के नीचे रहे थे। अन्य पशु पक्षियां भी बिल्कुल सुरक्षित थे वृंदावन में, बल्कि सारे मथुरा मंडल में कोई हानि नहीं पहुंच पाई। इंद्रदेव को थोड़ा भय हुआ, तुरंत इंद्र ने सांबर्तक बादलों को वापस बुला लिया। जब वर्षा तूफान आदि रुक गए तो भगवान ने ब्रजवासियों को बाहर जाने के लिए कहा। बड़े आनंदित होकर सारे ब्रजवासियों ने फिर से बाहर जाके अपने अपने कार्य शुरू कर लिए और वापस जाने के बाद गोपों के मन में कोई जिज्ञासा या संशय उत्पन्न हुए। वो जानना चाहते थे ये श्री कृष्ण है कौन। जब वो गोवर्धन के नीचे थे तो ऐसे उन्होंने कोई विचार नहीं किया, न ही कोई ऐसे विश्लेषण किया, परंतु जब गोवर्धन लीला समाप्त हो गई थी और वो अपने अपने घरों में आ गए थे, फिर उनका उनकी बुद्धि चलने लगी कि अरे हमने क्या देखा, क्या अनुभव किया हमने 7 दिनों तक। ये श्री कृष्ण हमारे बीच में कैसे आए, उन्होंने ऐसे अद्भुत कार्य किए हैं और फिर भी हम जैसे साधारण गांव में रहने वाले लोगों के बीच में वो प्रकट हुए हैं, किस प्रकार से कैसे ये संभव हुआ है। क्या उनको भगवान की कृपा मिली है, क्या नंद महाराज के पुण्य कार्यों की वजह से ये पुत्र उनको प्राप्त हुआ है, क्या किसी ब्राह्मणों के आशीष प्राप्त हुए हैं, या क्या वो स्वयं भगवान है। अगर स्वयं भगवान होते तो साधारण बच्चे की तरह क्यों भयभीत हो जाते। साधारण बच्चे का लाज को लाज प्यार जब किया जाता है खुश हो जाता है, वैसे ही कृष्ण भी खुश हो जाता है। और जब कोई डांट देता है या लाज नहीं करता तो फिर वो उदास हो जाता है, कृष्ण भी ऐसे ही करता है। अन्य बच्चों की तरह ये चोरी करता है, छोटी छोटी चीजों का, दही का, मक्खन का, कभी झूठ बोल लेता है, कभी रोता है, डरता है। और दूसरी ओर उतना त्रिनावत जैसे भयंकर राक्षसों का वध करता है और अब इसने ये विशाल गोवर्धन पर्वत को धारण किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये दोनों इतने विरोधाभास के बातें हैं कि कुछ निष्कर्ष पे हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। फिर उन्होंने सोचा कि उचित यह रहेगा कि वो नंद महाराज के पास जाए, क्योंकि नंद महाराज बड़े बुद्धिमान हैं। तो वहां पर गए और नंद महाराज जी से चर्चा कर रहे थे। चर्चा करते करते उन्होंने कह दिया कि हे नंद महाराज, हम ये जानना चाहते हैं कि ये कैसे संभव हुआ कि इस बालक ने ऐसे अद्भुत कार्य कर दिए हैं। जैसे केवल 7 वर्ष की आयु हुई है, उसने ये विशाल पर्वत को धारण किया एक हाथ में, जिस प्रकार से एक हाथी एक कमल पुष्प को उखाड़ देता है। और फिर आगे उन्होंने कहा कि आम मिलित अक्षेण अक्षजब, प्राय वो अपने आँख खोल भी नहीं सकते थे, इतने छोटे बच्चे थे, शिशु थे, तो उस समय उन्होंने पूतना राक्षसी का वध किया। तो ये कैसे संभव है? और फिर आगे व्रजवासी श्री कृष्ण ने जो अन्य असुरों का वध किया गोवर्धन लीला के पहले, उनका उल्लेख संक्षेप में करने वाले हैं। फिर ब्रजवासी गण कहते हैं, हिन्वतोध शयन शयानस्य मास्यस्य चरणावुदक अनोपतत विपर्यस्तम रुदतः प्रपदाहतम। जब वो केवल 3 महीने के थे, मास्यस्य केवल 2-4 महीने के होंगे, ज्यादा नहीं, तो चरणाव उदक अपने छोटे छोटे नन्हे चरणों को, चरण कमलों को उन्होंने ऊपर उठाया। जबकि वो बैठे थे एक अनह एक एक गाड़ी के नीचे, और वो गाड़ी जो है अपतक नीचे गिर पड़ा, विपर्यस्तम पूरा उल्टा हो गया। और क्योंकि बच्चा रो रहा था उस समय कृष्ण, और केवल उसके चरण कमलों के अग्रभाग का स्पर्श करके ये शकट जो है, ये गाड़ी जो थी वहां पर, वो गिर पड़ी। तो ये शकटासुर का के वध की बात यहाँ कर रहे हैं। शकट भंजन, एक बार माता यशोदा ने श्री कृष्ण को उस शकट के नीचे रख दिया था, हाथ गाड़ी जिसमें बहुत सारे बर्तन आदि सामान थे, और माता यशोदा कोई कार्य में व्यस्त हो गई। अनेक लोग आए थे घर में, गृहस्थ में आपको पता है कितने सारे कार्य रहते हैं, तो इधर उधर अपने घर में छोटे छोटे कार्य करने के लिए माता यशोदा घूम फिर रही थी। इधर श्री कृष्ण ने सोचा, अरे माता मेरे को भूल गई, दूध पीने का समय हो गया, मुझे भूख हो गया, माता का कोई पता नहीं कहाँ चले गए। गुस्सा आ गया श्री कृष्ण को, गुस्से में रोने लगे दूध के लिए। लेकिन उधर इतने लोग आ जा रहे थे, बातचीत चल रही थी, माता यशोदा ने सुना नहीं कि श्री कृष्ण रो रहे हैं। तो कृष्ण को और गुस्सा आया। फिर कृष्ण ने अपने छोटे छोटे नन्हे पैरों को, चरण कमलों को ऊपर उठाया, और केवल उस शकट के स्पर्श मात्र से वो सारा शकट टूट पड़ा। न केवल उसके अंदर जो सामान था, इतने बर्तन आदि थे धातु के, वो सब इधर उधर गिर पड़े। बड़ी आवाज आई, आप सब सुनते, एक बर्तन गिर जाता है तो कितना आवाज आता है, ये ढेर सारे बर्तन थे वहां, वो सब गिर पड़े तो बहुत आवाज आया। साथ साथ में शकट के जो चक्के हैं वो भी अलग हो गए, वो भी टूट गए। शकट कहा अलग अलग, उसके भार जो है अलग अलग जगह गिर पड़े। ये भयंकर आवाज सुनकर सारे ब्रजवासी बाहर आए कि अरे ये क्या हुआ, और देखा तो आश्चर्यचकित हो गए, कैसे हुआ, क्या हुआ। तो वहां थोड़े से छोटे बच्चे खेल रहे थे, तो बच्चों ने कहा कि हमने देखा है, ये श्री कृष्ण ने केवल अपने चरणों को ऐसे ऊपर उठाया और स्पर्श किया है शकट से, और उस स्पर्श मात्र से ये टूट गया, ये सारा शकट टूट गया। इस तरह से टूट गया ये तो संभव नहीं है, नहीं नहीं हमने हमारे आंखों से देखा है। तो उन्होंने सोचा, अरे ये तो बच्चे हैं, बड़बड़ा रहे हैं, बच्चे लोग बोलते रहते हैं, ऐसे थोड़ी हो सकता है। एक छोटे से 1-2 महीने के बच्चे के पास इतना बल होता है कि इतने विशाल शकट को तोड़ दें, ऐसे नहीं हो सकता। फिर बच्चों ने कहा, नहीं नहीं हमने देखा है। बाद में जाके ब्रजवासियों ने सोचा कि हाँ अभी हुआ होगा, क्या पता। तो ये शकटासुर था। शकटासुर वास्तव में एक असुर था जिसका शरीर हवा का बना हुआ था वायु, उसको एक शाप मिला था पूर्व जन्म में। वो हिरण्याक्ष का पुत्र था जिसका नाम था उत्कच, और उत्कच एक बार लोमस ऋषि के आश्रम में गया था और वहां पे उसने अनेक वृक्षों को आदि तोड़ दिया था, सब तहस नहस कर दिया आश्रम आश्रम के बाहर। वहां कौन बैठे थे? दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि के बारे में तो आप जानते हैं, क्रोध के लिए प्रसिद्ध हैं। तो उन्होंने शाप दे दिया कि अरे मूर्ख, तुमने इस प्रकार से यहाँ तहस नहस कर दिया है और तुम्हारा इतना बड़ा शरीर है, ऐसे बड़े शरीर से लेकर इधर उधर जाकर उत्पात करते हो, तो मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम निर्देह हो जाओगे, तुम्हारे पास कोई देह नहीं होगा। तो इस शाप की वजह से फिर इस उत्कच को एक हवा का शरीर मिल गया और वो कंस का मित्र था। कंस के पास ऐसे ही सब लोग थे। देखिए, आदमी को संग से पहचाना जाता है, किस तरह के लोग हम अपने पास रखते हैं, किन के बीच में हम उठते बैठते हैं। तो कंस के पास ऐसे ही लोग आते जाते थे। तो कंस ने सोचा कि कृष्ण मेरी मृत्यु का कारण होने वाला है, तो मेरे सारे मित्रों को इधर उधर भेजता हूँ। तो सब सारे मित्रों को इधर उधर भेज दिया कि ढूंढ निकालो कृष्ण कहाँ है और इसकी हत्या करो। तो ये शकटासुर भी यहाँ पर आया था, और उस समय लोमस ऋषि ने जब देखा कि ये उत्कच को भी पछतावा हो गया है और कृपा याचना कर रहा है, तो लोमस ऋषि ने कहा कि मैं इस श्राप को बदल तो नहीं, इसको पूरी तरह से खत्म तो नहीं कर सकता, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि अंत में भगवान श्री कृष्ण ही तुम्हारा उद्धार करेंगे उनके चरण कमलों के स्पर्श मात्र से। और ठीक ऐसे ही हुआ। तो उस असुर योनि से मुक्त होकर शकटासुर ने अपने जीवन के परिपूर्णता को प्राप्त किया। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि ये शकटासुर आलस और मंद बुद्धि और इंद्रिय तृप्ति के इच्छाओं के प्रतीक है। तमोगुण, विशेष करके जब हम आलस से ग्रस्त हो जाते हैं, अरे पढ़ना नहीं चाहते, हम मंदिर में नहीं जाना चाहते हैं, जप नहीं करना चाहते हैं, अरे सेवा कौन करेगा, चलो छोड़ो थोड़ा आराम करते हैं, ज्यादा और कौन जाएगा मंदिर, कौन सेवा करेगा, इतना सब कौन परेशान लेगा, आलस। तो आलस का शिकार नहीं होना चाहिए। तो आलस के शिकार जब हम हो जाते हैं, हमें पता चलता है, ईमानदारी से हमें इस बात को पहचान लेना चाहिए कि आलस की बीमारी से हम ग्रस्त हैं इस समय। तो क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण के सामने आना चाहिए और कहना चाहिए कि आपके चरण कमलों का स्पर्श कीजिए। जैसे आपने शकटासुर को बस केवल स्पर्श मात्र से आपने ठीक कर दिया था, उसी प्रकार से आपके चरण कमलों से हमारे हृदय के आलस को हटा दीजिए। फिर ब्रजवासी कहने लगे, एक हायन आसीनो ह्रियमाणो विहायसा दैत्येन यत्रिणावर्तम अहं कंठ ग्रहातुरम। एक हायन आसीनो, एक हायन एक वर्ष के जब थे श्री कृष्ण, और उस समय वो बैठे थे, ह्रियमाणो विहायसा, विहायसा मतलब आसमान में। तो ये एक असुर आया, दैत्येन एक दैत्य था असुर, जिसका नाम था यह त्रिणावर्तम, त्रिणावर्त इसका नाम था, और भवंदर के रूप में आया। और जो श्री कृष्ण जो उस समय केवल एक वर्ष के थे, उसको उठाकर आसमान में ले गए। भवंदर आप जानते हैं ना, वो तूफान में आते हैं, गोल 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 घूम कर आते हैं, सब उठाकर ले जाते हैं। तो उसी प्रकार से ये भवंदर ने श्री कृष्ण को उठा लिया। ये भवंदर रूपी असुर का नाम था त्रिणावर्त, ये भी कंस का मित्र था। और फिर भगवान श्री कृष्ण एक साल के बच्चे थे, बहुत हल्के थे, आसानी से उठा लिया। लेकिन श्री कृष्ण ने सोचा कि अरे ये क्या हो गया, ये तो असुर है और ये मुझे उठा के ले जा रहा है मुझे मारने के लिए। तो ठीक है, भगवान ने अपनी योग शक्ति का लेश मात्र प्रदर्शन किया। कई ऐसे योग सिद्धियां हैं जिनसे असुर, जिनसे योगी जो होते हैं, असुर नहीं योगी, वो बहुत ही हल्का हो सकते हैं और आसमान उड़ सकते हैं। कई ऐसे शक्तियां होती हैं जिनके द्वारा वो इतना भारी हो सकता है पत्थर से भी ज्यादा, कोई उनको उठा नहीं सकता है। तो भगवान ने भारी होने की शक्ति का प्रयोग किया, प्रदर्शन किया, इतने भारी हो गए कि त्रिणावत जो कि आसमान में ऊपर चला गया था, सोचने लगे अरे अब ये बोझ तो मुझसे सहा नहीं जाता, ये बच्चा इतना भारी कैसे हो गया। और त्रिणावत बहुत कोशिश कर रहा था उसे निकालने के लिए, लेकिन कृष्ण हटे नहीं। फिर क्या किया कृष्ण ने, अहन कंठ ग्रह आतुरम, उसे मार डाला। कैसे मार डाला, ग्रह आतुरम, उसको पकड़ लिया, ग्रह उसके गले को, गर्दन को पकड़ लिया और आतुरम बहुत कष्ट दिया, छोड़ा ही नहीं उसके गर्दन को। त्रिणावत सोच रहा था कि बच्चे को कैसे हटाएं यहां से, लेकिन बच्चा हट नहीं रहा था। तो इतने जोर से पकड़ लिया कि उसके सांस घुट गए और उसके प्राण निकल गए और बड़ी आवाज से त्रिणावत नीचे गिर पड़ा। अपने असली रूप को उसे पुनः स्वीकार करना पड़ा। तो इस प्रकार से त्रिणावत हालांकि इतना शक्तिशाली था, लेकिन एक वर्षीय बालक श्री कृष्ण के हाथों से आसानी से मारा गया। वैसे ये त्रिणावत, ऐसे गर्ग संहिता में कहा जाता है, इसका पूर्व जन्म नाम था सहस्राक्ष, पांड्य देश का राजा था। और एक बार वो निर्वस्त्र अवस्था में अनेकों के साथ रमण कर रहा था, तब दुर्वासा मुनि ने उसे शाप दिया और इस वजह से उसे त्रिणावत का शरीर प्राप्त हो गया। यहां दैत्य न शब्द का प्रयोग किया जाता है। दैत्य मतलब दिति के पुत्र कश्यप। मुनि के दो पत्नियां थी अदिति और दिति। तो अदिति के जो पुत्र हुए कश्यप मुनि द्वारा वो आदित्य कहलाते हैं, देवतागण हैं, जैसे सूर्य देव हैं, इंद्र हैं आदि। और दिति से जो पुत्र हुए उनको दैत्य कहते हैं, क्योंकि सही समय पे उनका जन्म नहीं हुआ था, इसीलिए वो दैत्य वृत्ति के हो गए। तो वो दुष्ट वृत्ति के हो गए थे, इसलिए वो दैत्य कहलाते हैं। तो जो भी असुर वृत्ति का होता है उसे दैत्य कहते हैं। तो दैत्य ने यह त्रिणावर्तम, तो भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे त्रिणावर्त असुर का वध करके उद्धार कर दिया। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि त्रिणावर्त झूठे भौतिक विद्वत्ता के प्रतीक है, साथ साथ जो विकार के जो तर्क होते हैं, वाद होते हैं, ऐसी चीजों के प्रतीक है। जिस तर्क और वाद से कोई झूठा सिद्धांत स्थापित होता है, जैसे मायावाद हो या बौद्धवाद हो, ये सब झूठे दर्शन। तो ऐसे झूठे तर्क से ऐसे सब झूठे सिद्धांत आते हैं। तो मनगढ़ंत ढंग से कोई भी एक दर्शन को का आविष्कार करना, ये अनादिकाल से ये वृत्ति रही है अनेक लोगों की। लेकिन हमें ऐसे मनगढ़ंत ढंग से कोई सत्य को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के आधार पर हमें ज्ञान समझ लेना चाहिए। तो जब ऐसे कोई भक्त इस वृत्ति को त्याग कर नम्रता को स्वीकार करता है, तो भगवान श्री कृष्ण आकर्षित हो जाते हैं उस व्यक्ति, उस भक्त के ऊपर, और फिर उसका जीवन सफल करा देते हैं। तो ब्रजवासी गण ने ये सब देखा था और अब देखते हैं कि नवजात शिशु पूतना राक्षसी को साधारण तो मार नहीं सकता, एक शकट को इस प्रकार से तोड़ नहीं सकता, अब इस विशाल शक्तिशाली भवंदर को भी वो ऐसे मार नहीं सकता, ये कैसे सब संभव हुआ। और इतना ही नहीं, और भी ऐसे कार्य हैं जो श्री कृष्ण ने किए थे। कौन से कार्य हैं? क्वचित धैयांगवस्तंगे मात्राबद्ध उदूखले गच्छन अर्जुनयोर मध्ये बाहुभ्याम ताल अपाधयत। एक बार माने हयंगव स्तैन्य मतलब हयंगव मतलब माखन, स्तैन्य मतलब चोरी करना। जब भगवान श्री कृष्ण ने माखन चोरी की थी मात्रा बद्ध उदूखले, उदूखले मात्रा मतलब मां ने श्री कृष्ण को बांध दिया था, बद्ध उदूखले मतलब उखल कर, तो मां ने बांध तो दिया लेकिन कृष्ण ने क्या किया? गच्छन अर्जुन योर मध्ये, वो गए दो अर्जुन वृक्षों के बीच में बिल्कुल। बाहुभ्याम ताप अपातयत, बाहुभ्याम मतलब अपने दो हाथों से अपने दो भुजाओं से उन दो विशाल वृक्षों को गिरा दिया। अपातयत, उस समय भी सारे ब्रजवासी आश्चर्यचकित हो गए, सभी आए वहां पर, क्या हुआ क्या हुआ। और हर बार ऐसे होता था जब बड़े असुर आते थे और उनका शरीर गिर पड़ता था, जैसे पूतना का हुआ या फिर शकटासुर का हुआ, और श्री कृष्ण के शरीर में एक बाल को भी कुछ नहीं हो जाता था। ये कैसे संभव है? ये बच्चा इस शकट के नीचे सोया है, ये शकट टूट गया, सारे बर्तन आदि सब गिर पड़े, वो शकट भी गिर गया लेकिन श्री कृष्ण के ऊपर कुछ नहीं गिरा, ये कैसे संभव है? तो यहां पर भी जब उन्होंने श्री कृष्ण ने दोनों अर्जुन वृक्षों को गिराया तो कृष्ण के ऊपर गिरे नहीं, उसमें से फिर नलकूवर और मणिग्रीव बाहर आए। जब ब्रजवासी वहां पर आए तो बच्चों को पूछा उन्होंने, अरे बताओ तो सही क्या हुआ यहाँ पर? तो बच्चों ने बताया कि हाँ, हमने देखा कि यहाँ पर श्री कृष्ण उखल से उखल को खींच के आ रहा था, उखल को खींचा, खींचते खींचते जब आया तो उखल अटक गया यहाँ पर दो अर्जुन वृक्षों के बीच में, और कृष्ण आराम से खींच के दोनों वृक्ष गिर पड़े। और इतना ही नहीं, इन दो वृक्षों में से दो ऐसे आदमी बाहर निकले, स्वर्ण रंग के थे, तेजस्वी प्रकाशमान, हवा में खड़े थे, और हवा में खड़े होकर हाथ जोड़कर कृष्ण से प्रार्थना कर रहे थे, कृष्ण की स्तुति कर रहे थे, हमने अपने आंखों से देखा है। फिर से ब्रजवासी ने सोचा, ये बच्चे बड़बड़ा रहे हैं, क्या क्या कहते हैं ये लोग, पहले शकट को मारकर इसने बंद किया, कह रहे अभी कह रहे कि दो सोने स्वर्ण रंग के लोग अभी वृक्ष के अंदर से, किसी ने देखा है ऐसे? क्या ये संभव है? ऐसे कभी होता है? और वो भी आसमान में खड़े होकर बात कर रहे हैं, ये सब क्या है? और हमारे कृष्ण के सामने ये दो लोग खड़े होकर हाथ जोड़ के खड़े हैं। तो उन्होंने विश्वास नहीं किया, लेकिन फिर भी सोचा ये अद्भुत बात है कि ये बच्चा कैसे बच्चा, और उसने ये उखल खींच के कैसे लिया, इतनी ताकत कैसे आई इस बच्चे के अंदर? ठीक है उखल खींच तो लिया, लेकिन दो वृक्ष गिराने के लिए ताकत कहां से आई? तो इस प्रकार से वो सोच में पड़ गए। यमल अर्जुन वृक्ष पहले नल कुंवर और मणिग्रीव थे जो कुबेर के पुत्र थे, कुबेर तो खजांची हैं देवताओं के, तो वैसे तो बड़े सम्माननीय पद पर हैं, परंतु उनके दो बच्चे, उनके दो लड़के जो थे, निर्लज्ज होकर एक बार रमण कर रहे थे निर्वस्त्र अवस्था में, और नारद मुनि वहां से गुजर रहे थे, और नारद मुनि के सामने भी उन्होंने अपने आप को ढक नहीं लिया, तो नारद मुनि को कृपा हुई उनके ऊपर कि अरे ये दो इतने अच्छे परिवार के लड़के हैं, लेकिन देखो क्या दशा है इनकी, बिल्कुल अपने सभ्यता को भूल चुके हैं, और कोई साधु जा रहा है फिर भी अपने शरीर को भी नहीं ढक रहे हैं, तो कैसी कैसी दशा है? तो नारद मुनि सोच रहे थे कि इनके अंदर अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हो गया है। ऐश्वर्य के घमंड से कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति नैतिक जीवन को त्यागता है, क्योंकि जब धन होता है तो आदमी के पास शक्ति होती है, कुछ भी कर सकता है वो, तो फिर संसार के विषयों का आकर्षण इतना रहता है कि वो नैतिक पथ को छोड़ के सारे बुरे काम करने लगता है। यह बुरे काम चार प्रकार के विशेष करके होते हैं कलयुग में। पाप के खंभे चार होते हैं कलयुग में, कौन से हैं वो? एक, मांसाहार करना, दूसरा मदिरापान करना, तीसरा जुआ खेलना, चौथा अवैध स्तंभ करना। ये चार चीजें हैं, जहां धन है इन चार चीजों की होने की पूरी संभावना है। इसलिए जब परीक्षित महाराज जब अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे, जैसे कि राजा को करना चाहिए देखने के लिए कि राज्य में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं, और सब कुछ धर्म के नियमों के अनुसार चल रहा है या नहीं, मेरे सारी प्रजा धर्म परायण है या नहीं, ये देखने के लिए परीक्षित महाराज भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने अचानक देखा कि एक व्यक्ति जो कि वास्तव में मूर्तिमान कली था, एक राजा का वेश पहनकर वो एक बैल के ऊपर हिंसा कर रहा था। इस बैल की बहुत बुरी हालत थी, तो परीक्षित महाराज तुरंत इस कली को गिरफ्तार कर लिया और कहा कि मुझे तुम्हें तुरंत मार देना होगा, क्योंकि तुमने गाय और बैल के प्रति आक्रमण किया है, हिंसा की है, और इसके लिए मृत्युदंड ही एकमात्र दंड है। तो कली ने जब क्षमा याचना की तो परीक्षित महाराज ने कहा ठीक है, परंतु तुम यहां नहीं रह सकते, तुम्हें राज्य के बाहर मैं बहिष्कृत कर दूंगा, बाहर जाओ। तो फिर कली ने फिर बहुत क्षमा याचना की, तो फिर परीक्षित महाराज ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें ऐसे एक स्थान में भेज दूंगा जहां पे सोना है बहुत धन है। क्योंकि परीक्षित महाराज को पता था कि जहां सोना या जहां धन है, ये चार वर्जित कार्य अवश्य होंगे, वहां कली का प्रभाव आएगा। तो कलियुग के ये चार विशेष गुण हैं। बहुत बड़े पैमाने पर ये चार चीजें पाई जाती हैं, बल्कि अगर आप ये चार चीजें नहीं करोगे तो आप सभ्य नहीं माने जाते। अगर आप शराब नहीं पीते, सोचेंगे लोग कहते अरे क्या कर दो, शराब नहीं पीते हो क्या है, बहुत बैकवर्ड आदमी हो, पिछड़े हुए आदमी हो। अच्छे अच्छे कुल के घर के लोग जब बाहर जाते हैं, अपने नौकरी में सर्विस में बिजनेस में जाते हैं, तो खाना पीना पड़ता है, कहते हैं कि क्या करें, हम इनके साथ हम मार्केटिंग में हैं तो हमें जाना पड़ता है उनके साथ में, और उनको कोई होटल में ले जाना पड़ता है, उनको खिलाना पिलाना पड़ता है, उनके साथ में भी हमें खाना पीना पड़ता है। तो आजकल एक नियम बन गया है, अगर आपको व्यवसाय करना है तो आपको खिलाना पिलाना चाहिए, क्या खिलाना पिलाना चाहिए, ये सब चीजें जो वर्जित है, जो बिल्कुल पाप है करना, और अन्य भी चीजें बहुत सारी करनी पड़ती है। मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, हमारे ग्राहकों को हम एंटरटेन कर रहे हैं, उनको मनोरंजन करवा रहे हैं, इधर उधर ले जा रहे हैं, और ये आजकल एक फैशन बन गया है, सभी जगह ये फैल रहा है। शराब पीना, मांसाहार करना, जुआ खेलना, और आजकल जुए को भी एक बहुत ही सम्माननीय रूप दिया जा रहा है, लॉटरी, और फिर टेलीविजन में भी कई कौन बनेगा करोड़पति, ये तो क्या है, एक प्रकार से जुए ही है, ये इतना करो, ये प्रतियोगिता में शामिल हो जाओ, जिसको मिल जाएगा उसको 10 लाख मिल जाएंगे, 1 करोड़ मिल जाएगा। तो जब बिना परिश्रम किए हुए, बिना योग्यता के हमें बहुत आसानी से इतना सारा धन मिल जाता है, तो हम क्या करेंगे उस धन का, दुरुपयोग ही करेंगे ना। तो आजकल ये चार जो वर्जित कार्य हैं, वो प्राय नियम बन गए हैं कि इनको तो करना ही चाहिए, इनको किए बिना आप उस समाज में रह नहीं सकते, विशेष करके भारत में अभी ऐसे हो गया है प्रथा, यहाँ पे सभी लोग नकल कर रहे हैं, जो शाकाहारी परिवारों में से थे आजकल बच्चे भी वो बाहर जाके सब खाते हैं, फिर धीरे धीरे अभी अगली पीढ़ी में घर में भी हो जाएगा। तो जब धन आ जाता है तो ये सारे बुरे कार्य आ जाते हैं। तो नारद मुनि ने सोचा कि धन की वजह से इनको इतना अभिमान हुआ है, तो इनके अभिमान को घमंड को कम करना है, तो इनको एक दारिद्र की अवस्था में, दरिद्र अवस्था में उनको भेजना चाहिए जहां वो किसी का नुकसान नहीं कर सके। तो वृक्ष का शरीर मिलना चाहिए उनको। वृक्ष का शरीर कैसा है? तमोगुण शरीर है, लेकिन कम से कम ऐसे शरीर में वृक्ष जो है दूसरे का नुकसान तो नहीं कर सकता। वो खड़ा रहता है बेचारा ऐसे ही निर्वस्त्र अवस्था में, ठंडी में, गर्मी में, वर्षा में, हर अवस्था में, हर मौसम में खड़ा रहना पड़ता है। तो फिर नारद मुनि ने ऐसे श्राप दे दिया। नारद मुनि जैसे भक्तों के श्राप में और आशीर्वाद में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि दोनों ही नारद मुनि जैसे भक्तों के वो उनके कृपा के लक्षण हैं, बस कृपा के अलग रूप हैं। उनके श्राप या आशीर्वाद से व्यक्ति की भलाई होती है। तो वो सोच रहे थे कि इनकी दुष्ट बुद्धि जो है कैसे बदली जा सकती है। तो ऐसे श्राप देने से अवश्य इनकी बुद्धि बदलेगी। जब उन्होंने क्षमा याचना की नलकूवर और मणिग्रीव ने, तो भगवान तो नारद मुनि ने कहा कि यहां आगे चल के द्वापर के अंत में स्वयं परम सत्य श्री कृष्ण जब वृंदावन में प्रकट होंगे तब तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो देखिए, हालांकि लाखों वर्षों तक नलकूवर और मणिग्रीव को पेड़ के शरीर मिल गए, फिर भी अंत में उनको साक्षात भगवान का दर्शन हुआ। वृंदावन में उनको जन्म मिला, स्वयं भगवान ने उनका उद्धार किया। तो ये श्राप था या आशीर्वाद था? आशीर्वाद था। तो संतों के श्राप जो होते हैं कभी श्राप नहीं होते, वो आशीर्वाद ही होते हैं, क्योंकि अंततः उनसे भला ही होता है। क्योंकि संतों में भगवान के गुण होते हैं। जिस प्रकार से भगवान जब किसी असुर का वध करते हैं तो उस असुर को मुक्त कर देते हैं, मोक्ष प्रदान कर देते हैं, वो निराकार ब्रह्म में लीन हो जाता है, कम से कम जन्म मृत्यु के चक्कर से तो छूट जाता है। और पूतना जैसे विशेष सौभाग्यशाली असुरों को वो अपने गोलोक वृंदावन में भी स्थान दे देते हैं। तो उसी प्रकार से जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो किसी से द्वेष नहीं करते। कभी कभी जब हम किसी को श्राप देते हैं तो द्वेष से, अहंकार से, क्रोध से देते हैं, परंतु भगवान के शुद्ध भक्त श्राप देते भी हैं तो इस कारण से देते हैं क्योंकि उनके हृदय में करुणा की भावना होती है। वो सोचते हैं कि इस व्यक्ति के दुष्ट प्रवृत्ति को कैसे सुधारा जा सकता है, इसलिए वो श्राप देते हैं। जब व्यक्ति दरिद्र होता है तो फिर वो क्रूर नहीं बनता, क्योंकि वो सोचता है कि दूसरा गरीब आदमी है वो भी मेरी तरह है, तो मैं उसे भी क्यों कष्ट दूं। जब आपने आदमी अमीर होता है तो दूसरों को कष्ट देने की प्रवृत्ति आसानी से आ जाती है। केवल व्यक्ति सतुगुणी होगा तो अपने आप को रोक लेता है, अपने बुद्धि को ठीक कर लेता है। तो इस प्रकार से दारिद्र की अवस्था में लाभ भी है। हालांकि आवश्यक नहीं है कि कोई गरीब बन जाए तो भगवान का भक्त बन जाए। कितने सारे गरीब लोग हैं इंडिया, भारत में भी और बाहर भी, भगवान के भक्त नहीं बनते। तो केवल दरिद्र होना ये भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए एक उचित या पर्याप्त योग्यता नहीं है। फिर भी जब व्यक्ति गरीब होता है तो साधारणतः इतना क्रूर नहीं होता है, और साथ साथ जब उसे धन मिल भी जाता है तो सोचता है कि मैं जब गरीब था तो मेरी क्या दशा थी, इसलिए मैं दूसरों की मदद के लिए कुछ न कुछ कार्य करूंगा। तीसरी बात यह भी है, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक गरीब आदमी के घर में एक साधु आसानी से प्रवेश कर सकता है। होता इतना छोटा है उसका घर, तो आसानी से प्रवेश कर सकता है। फिर उस साधु के संकल्प लाभ उस गरीब आदमी को मिल सकता है। परंतु एक अमीर आदमी का बड़ा घर होता है, कई चौकीदार आदि रहते हैं, कोई आसानी से अंदर नहीं जा सकता। इसलिए अमीर आदमी को भक्तों की कृपा प्राप्त करना भी उतना आसान नहीं होता। तो नारद मुनि ऐसे सब सोच रहे थे और फिर उन्होंने इस प्रकार का श्राप नलकुवर और मणिद्वीप को दिया। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि ये जो नलकुवर और मणिग्रीव है और इनके जो इनके उद्धार की जो लीला है, इससे हम ये सीख सकते हैं कि ऊंचे जन्म का अभिमान हमें नहीं होना चाहिए। ऊंचे जन्म का अभिमान जब होता है उससे निर्लज्जता आती है, निर्लज्जता से तरह तरह के गलत कार्य आते हैं, व्यभिचार आदि। इसलिए हमें इन चीजों से बचना चाहिए। तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि कोई गरीब होके भक्त बने, उसी प्रकार से आवश्यक नहीं है कि कोई अमीर होके दुष्ट हो। गरीब हो या अमीर हो, आदमी दुष्ट भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। हर एक व्यक्ति की प्रवृत्ति अलग अलग रहती है। जिसकी जैसी बुद्धि, जिसका जैसा संग, वैसे वैसे उसके कार्य रहेंगे। लेकिन यह नलकुवर और मणिग्रीव के उदाहरण से हम सीख सकते हैं कि प्राय ऐसे देखा जाता है। इसलिए आसानी से आने वाला धन वो बहुत खतरनाक होता है। आदमी को समझ लेना चाहिए कि ये धन, ये सब कुछ, ये शरीर हमारे भोग के लिए नहीं है, ये सब भगवान श्री कृष्ण की संपत्ति है और कृष्ण की सेवा के लिए ही हमें इस्तेमाल करना चाहिए। फिर आगे ब्रजवासी कहते हैं, वने संचारयन् वत्सान् स रामो बालकैर्वृतः हन्तु कामं बकं दोर्भ्यां मुखतोरिम् अपाटयत्। वने संचारयन् वत्सान्, फिर वन के अंदर वत्सों को, गाय के बछड़ों को चराने के लिए जब ले गए थे श्री कृष्ण, स रामो बालकैर्वृतः, अकेले नहीं गए श्री कृष्ण, सह राम बलराम भी साथ में थे, बालक ही अन्य जो गोप बालक थे वो भी साथ में थे और वो घेर के आए थे सब श्री कृष्ण को। व्रत हंत कामम बकम दोभ्याम मुख तोरिम अपाटयत। उस समय एक असुर जिसका नाम था बकासुर, एक ऐसे विशेष रूप में आया, बतख के रूप में। उसकी चोंच बहुत लंबी थी, धार वाली थी। तो उसने देखा और कृष्ण को मारने का प्रयास किया और कृष्ण ने बड़े आसानी से उसका वध कर दिया। चोंच से जब उसने मारने का प्रयास किया तो श्री कृष्ण को वास्तव में निगल लिया बकासुर ने। उधर बलराम और अन्य ग्वाल बाल प्राय बेहोश होकर गिर पड़े दुख के कारण, जब उन्होंने देखा। लेकिन बकासुर के अंदर जब श्री कृष्ण गए तो बकासुर को इतनी गर्मी लगी गर्दन के अंदर कि तुरंत मुंह खोल के वापस श्री कृष्ण को बाहर कर दिया। जब कभी कभी अचानक हम बहुत गर्म चीज खा लेते हैं तो तुरंत मुंह खोल के उसको बाहर निकाल देते हैं। बकासुर के अपने मुख के अंदर श्री कृष्ण को लिया, लेकिन श्री कृष्ण इतने गर्म हो गए कि बाहर तुरंत उनको निकाल दिया। फिर चोंच से और मारने का प्रयास किया, फिर श्री कृष्ण ने आसानी से बकासुर के दो चोंचों को पकड़ लिया अपने नन्हे हाथों से और इस प्रकार से दोनों को फाड़ दिया, जैसे एक बच्चा एक तृण को घास के तृण को दो भाग में इस प्रकार से फाड़ देता है। और बकासुर का वध जब इस प्रकार हुआ तो देवलोक से भी फूलों की वर्षा होने लगी। तो यहां श्रील भक्ति सिद्धांत कहते हैं कि ये बकासुर अपने पूर्व जन्म में दुर्वासा मुनि के एक शिष्य थे, गंधर्व थे वो, जिनका नाम था सुहोत्र। और एक बार वो एक पुष्कर तीर्थ में गए थे जहां एक कुंड था। उस कुंड में, उस सरोवर में बहुत सारे पुष्कर थे, पुष्कर मतलब कमल पुष्प, और वहां उन पुष्पों को लेने के लिए गए क्योंकि वो भगवान कृष्ण को अर्पण करना चाहते थे। लेकिन उधर शिवजी के सेवकों ने गिरफ्तार कर लिया सुहोत्र को और उसके साथ में और दो भाई थे। तो उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया, शिव जी के पास ले आए। शिव जी ने कहा कि यहां पर 1,00,000 कमल पुष्प हैं और मेरी पत्नी पार्वती देवी ने व्रत लिया है कि हर रोज वो 100 ऐसे पुष्प भगवान कृष्ण को अर्पण करेंगी और 100 दिन के लिए करेंगी। तो ये 10,000 जो पुष्प यहां पर हैं वो केवल इतने ही हैं, और मैंने ये वर दिया उसको कि कोई अगर ऐसे इन पुष्पों को उठाएगा तो मैं श्राप दूंगा, इसलिए मैं तुम्हें मुझे श्राप देना पड़ रहा है कि तुम वहां जाके असुर बनोगे, परंतु श्री कृष्ण ही तुम्हारा उद्धार करेगा। तो इस प्रकार से बकासुर और उनके दो भाई असुर बन गए, बकासुर बन गए सुहोत्र उनके दो भाई, और बकासुर के रूप में यहां पर आए। भगवान श्री कृष्ण ने बकासुर का उद्धार कर दिया, उनके धाम में उनको भेज दिया। तो हम समझ सकते हैं कि भगवान जब असुरों के साथ ऐसे लीला करना चाहते हैं तो किसी न किसी तरह से वो उसकी योजना बनाते हैं। इसलिए ये सुहोत्र आदि वहां गए, कमल पुष्प को उन्होंने तोड़ दिया, शिव जी ने श्राप दे दिया, ये सब भगवान की लीला के अंतर्गत होता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि बकासुर जो है वो कपट और धोखेबाजी के प्रतीक है। इस भौतिक जगत में जो भी मत जीव जन्म लेता है उसके अंदर सारे दुर्गुण रहते हैं, किसी के अंदर कम किसी के अंदर अधिक मात्रा में रहते हैं। तो अगर हमारे अंदर ऐसे कोई वृत्ति है तो हमें श्री कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए कि जिस प्रकार से आपने बकासुर का वध किया था उसी प्रकार से हमारे अंदर जो कपट की जो वृत्ति है उसका भी नाश कर दीजिए। तो ऐसे ब्रजवासी का स्मरण करते आए हैं कि श्री कृष्ण ने कैसे अनेक असुरों का वध किया था। फिर आगे वत्सासुर का वर्णन करते हैं। वत्सेषु वत्स रूपेण प्रविशन्तं जिघांसय हत्वा न्यपातयत्तेन कपित्थानि च लीलया। वत्सेषु वत्सों के बीच में वत्स रूपेण प्रविशन्तं जिघांसय, ये असुर आया वत्सों के बीच में घुस पड़ा और उसने भी वत्स का ही रूप धारण किया, और फिर उसकी इच्छा क्या थी, जिघांसय, वो कृष्ण को मारना चाहता था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने पहचान लिया कि ये असुर है, बलराम से कहा कि बलराम देखो ये असुर है लेकिन वत्स का रूप धारण करके यहाँ आया है, तो देखो मैं कैसे अब इसको ठीक करता हूं। तो श्री कृष्ण गए, बहुत सावधानी से उस वत्स के पीछे गए, दोनों पीछे के पैरों से पकड़ लिया उसको और घुमाया घुमाया घुमाया, घुमाते घुमाते फिर ऊपर फेंक दिया, और उसने तेजी से घुमाया कि उसके प्राण निकल गए, वो कपित वृक्षों के ऊपर जाके गिर पड़ा और फिर वो मर गया। तो इस प्रकार से भगवान ने वत्सासुर का भी वध किया। गर्ग संहिता में बताया गया है कि ये वत्सासुर जो है वो पहले प्रमिल नाम के एक असुर थे। इस असुर ने देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया था युद्ध में, और भ्रमण करते करते वो वशिष्ठ मुनि के आश्रम में आए, देखा कि यहाँ वशिष्ठ मुनि के पास सुंदर गाय है नंदिनी, नंदिनी को लेना चाहते थे लेकिन उन्होंने जान लिया कि जबरदस्ती से लेंगे तो वशिष्ठ मुनि श्राप दे देंगे। उन्होंने विश्वामित्र को भी श्राप दिया था, विश्वामित्र को भी सामना कर लिया था उन्होंने वशिष्ठ ने, जब विश्वामित्र ने छीन लेना चाहा था नंदिनी गाय को। तो उन्होंने सोचा कि मैं क्षत्रिय के रूप में नहीं जाऊंगा, मैं ब्राह्मण बन के जाऊंगा और दान मांगूंगा। लेकिन वशिष्ठ मुनि ने तुरंत पहचान लिया कि तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम केवल वेश बदल के आए हो, तुम मेरे से जानबूझकर ऐसे धोखेबाजी कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तो इस श्राप की वजह से फिर वो वत्सासुर बन गए। तुम अभी वत्स छीन लेना चाहते हो मेरा, तुम वत्स का रूप धारण करो। तो ऐसे एक वत्सासुर ये बन गए प्रमिल असुर। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि वत्सासुर उस दुष्ट वृत्ति के प्रतीक हैं जो कि बुरे संग से उत्पन्न होता है और जिससे कि इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा उत्पन्न होती है मन में। तो अगर हमारे अंदर बुरे संग प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती है, कभी कभी हमारे पुराने मित्रों के पास हम जाना चाहते हैं, भक्ति में आने के पहले हम इनके संग में जाते थे, आते थे, उठते बैठते थे, खाते पीते थे, रमण करते थे, और अगर ऐसे पुराने तथाकथित मित्र हमारे हैं जो हमें बार बार बुलाते हैं, अरे क्या भक्ति करते हो, चलो हमारे साथ चलो, हम सिनेमा जाते हैं, इधर जाते हैं, अगर ऐसे कोई दबाव आ रहा है, ऐसे हमारे अंदर कोई कमजोरी दिखाई पड़ रही है कि ठीक है हम कभी उनकी बात मान लें, तो श्री कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए, जैसे आपने वत्सासुर का वध किया वैसे आके आप ये जो दुष्ट प्रवृत्ति हमारे अंदर है बुरे संग के लिए, उसको आप कृपया नष्ट कर दीजिए। आगे चल के धेनुकासुर के वध का स्मरण करते हैं ब्रजवासी। हत्वा रासबदैतेयम् तद्बन्धुंश्च बलान्वितः चक्रे तालवनम क्षेमम परिपक्व फलान्वितम्। हत्वा रासभ दैतेयम्, रासभ मतलब गधा, गधे के रूप धारण करके ये दैत्य आया था और उसकी इच्छा थी कि वो अपने बंधुओं के साथ, अपने मित्रों के साथ आए। तत् बंधुंश्च बलान्विता, बहुत शक्तिशाली था, लेकिन बलराम ने बड़े आसानी से इस धेनुकासुर का वध कर दिया। ताल वन में इसने कब्जा जमा दिया था, अतिक्रमण किया था, तो ये अतिक्रमण करने का जो तरीका ये भी पुराना ही है ना, आजकल लोग अतिक्रमण कहते हैं कि दूसरे के संपत्ति में जाके बैठ जाते हैं, उठते नहीं है, ये तो पुराना है, सब पुराने समय से, कृष्ण के समय से चल रहा है। तो धेनुकासुर ने अतिक्रमण करके तालवन के ऊपर कब्जा जमा लिया था, तो सब लोग बोल रहे थे इतने अच्छे अच्छे फल है हमको खाना है, तो ग्वाल बाल ने जब कहा तो कृष्ण बलराम वहां गए, बलराम ने जोर से उन पेड़ों को हिला दिया, धेनुकासुर को क्रोध आया, आक्रमण किया और बलराम ने आसानी से धेनुकासुर का वध कर दिया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि धेनुकासुर उस दुष्ट प्रवृत्ति के प्रतीक हैं जिनमें हम ज्यादा से ज्यादा संसार का बोझ बढ़ाना चाहते हैं, जिससे कि हमारी बुद्धि जो है वो मंद हो जाती है और हमें आत्मा के बारे में बिल्कुल ज्ञान नहीं रहता, बिल्कुल देह बुद्धि में हम मग्न हो जाते हैं। मैं आत्मा हूँ, मैं आध्यात्मिक हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, इस ज्ञान से हम पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। तो धेनुकासुर बलराम जी ने वध किया क्योंकि बलराम जी वो आदि गुरु हैं और आदि गुरु उनको, गुरु जो होते हैं वो ज्ञान देते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मुझे भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो उसी प्रकार से गुरु के आश्रय को स्वीकार करके हमारे हृदय में जो धेनुकासुर रूपी अज्ञान है उसका नाश हमें करना चाहिए। फिर आगे चल के वो प्रलम्बासुर और दावन को निगलने की बात कर रहे हैं। प्रलम्बम घात यति वो ग्रम बलेन बलशालिना अमोचयत व्रज पशून गोपांश्चारण्य वहनितः। वो कहते हैं कि जैसे बलराम ने धेनुकासुर का वध किया उसी प्रकार से उन्होंने प्रलम्बासुर का भी वध किया। प्रलम्बासुर ये बकासुर के भाई थे पूर्व जन्म में, जो तीन भाई थे जिन्होंने जाके पुष्कर तीर्थ में वो पुष्कर या कमल पुष्प निकाला था, उनमें से एक भाई ये भी थे सुदर्शन, जो आगे चल के प्रलम्बासुर बन गए। तो प्रलम्बासुर जो है वो काम वासनाओं के प्रतीक है और पूजा लाभ प्रतिष्ठा इन गलत विचारों के प्रतीक है। ये बीमारी तो सबकी है इस जगत में, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, सभी लोग चाहते हैं कि लोग हमारा सम्मान करें, हम कोई बड़े व्यक्ति हो जाएं। अगर ऐसी इच्छाएं हमारे हृदय में आती हैं तो भगवान हमें बलराम से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप आदि गुरु हैं। जैसे आपने धेनुकासुर के दो पीछे पांव पकड़ के आपने घुमाया, उसी प्रकार से इस राक्षस को उखाड़ दीजिए हमारे हृदय से। साथ साथ जब कालिया दमन करने के बाद ब्रजवासी यमुना के तट पर थक कर सोए हुए थे तो एक दावानल हो गया, जंगल में आग लग गई। तो ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि कुछ करना, तो कृष्ण ने आसानी से उस दावानल को निकल दिया। उनसे कहा आंखें बंद कर लो, आंखें बंद कर ली, निकल दिया अंदर एक क्षण में। कोई कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि भगवान के लिए संभव और असंभव का कोई विचार ही नहीं है, क्योंकि हर चीज भगवान के लिए आसानी से संभव है, इसलिए तो वो भगवान है। तो ब्रजवासीगण इन सब अद्भुत लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि ये दावानल जो है ये वैष्णवों के बीच में जो मतभेद होते हैं उनके प्रतीक हैं। तो अगर भक्तों के बीच में किसी कारणवश कोई सिद्धांत के ऊपर या कोई दूसरे कारण से ऐसे कोई मतभेद होने लगते हैं जिससे कि संबंध खराब होने लगते हैं और एक दूसरे की परस्पर एक दूसरे के बीच में कोई गलत भावनाएं उत्पन्न होती हैं, द्वेष उत्पन्न होता है, तो फिर हमें भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए कि कृपया ये वैष्णवों के बीच में ये जो भी गलत फहमियां हैं, मतभेद हैं, ये अग्नि है जो कि हमारे समाज को खा सकती है, जला डाल सकती है, हमारे सारे आंदोलन को नष्ट कर सकती है, इसलिए कृपया इस भयंकर आग को जल्दी से निकल लीजिए। तो जब भी ऐसे कुछ भक्तों के बीच में मतभेद हो भी जाते हैं छोटे छोटे बड़े चीजों के लिए, तो हमें कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए कि इस आग को बढ़ने से पहले आप निकल लीजिए। ऐसे कहा जाता है, चाणक्य पंडित कहते हैं कि बीमारी, ऋण और अग्नि, इन तीन चीजों को बढ़ने के पहले ही कुछ करना चाहिए, इनका निवारण कर देना चाहिए, नहीं तो जब बढ़ जाएंगी तो फिर हाथ से बाहर निकल जाएंगे। तो इसी प्रकार से जब ऐसे कोई मतभेद आदि होता है तो तुरंत उसका सामना कर लेना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि सभी के मन में वो वृत्ति आ जाए कि सब कुछ ठीक ठाक चले। और न केवल वैष्णवों के बीच में लेकिन अनेक धर्मों के बीच में या धर्म के आधार पर जो भी कुछ झगड़े होते हैं समाज में, वो सब यहाँ इस दावानल के प्रतीक हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा होगी तो भगवान इस दावानल को आसानी से निगल सकते हैं। और फिर कालिया का वर्णन करते हैं, कहते हैं कि आसी विषतम अहि इंद्रम दमित्वा विपदम हृदा। वो कहते हैं कि अपने भयंकर विषैली अपने फणों से ये कालिया ने सारे यमुना के जल को प्रदूषित कर दिया था और उसमें सारे ब्रजवासीगण और गाय जो आए थे उनको बहुत कष्ट पहुंचा था। और कालिया वहां अपने पत्नियों के साथ यमुना के नीचे रहता था, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने कालिया के ऊपर ऐसी कृपा की, कालिया के फणों में नृत्य करके कालिया का दमन कर दिया और फिर कालिया का उद्धार इस प्रकार से हो गया और कालिया को यमुना से दूर कर दिया। कहा जाता है कि कालिया फिजी देश में है। फिजी एक ऐसा देश है, छोटा देश है, द्वीप है, जो जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है, महासागर के बीच में। वहां भारतीय लोग अनेक रहते हैं, 50% लोग वहां पे भारतीय है जो यहां से 200 साल पहले गए थे। तो प्रभुपाद जी कहा करते थे कि कालिया को भगवान कृष्ण ने फिजी भेज दिया था यमुना से। तो खैर कालिया का दमन भगवान ने तो किया, लेकिन पिछले जन्म में एक ऋषि थे जिनका नाम था वेदाशिरा, वेदशिरा, और वेदशिरा को शाप मिला था, क्योंकि और एक ऋषि थे जिनका नाम था अश्वशिरा। अश्वशिरा भी ध्यान करना चाहते थे उनके आश्रम में बैठकर, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। तो अश्वशिरा ने श्राप दे दिया कि क्योंकि तुम क्रोध से ऐसे सांप की तरह आवाज कर रहे हो, तुम सांप बन जाओ। तो उनको कालिया का देह प्राप्त हो गया। लेकिन कालिया के ऊपर जो कृपा भगवान ने की, देखिए ये असीमित है, इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। श्रील भक्त सिद्धार्थ सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि अनेक बार भगवान ऐसी योजना करते हैं, ऐसी व्यवस्था करते हैं जिससे कि दुष्ट लोगों के द्वारा बहुत कष्ट पहुंचता है भक्तों को, और क्योंकि भक्तों के ऊपर इतना कष्ट पहुंचता है तो भगवान आते हैं, वो दुष्ट का संहार करते हैं, उसका विनाश करते हैं, और ऐसे उसका वध करके या उसका दमन करके असीमित कृपा उसके ऊपर बरसा देते हैं। तो देखिए भगवान की कृपा का विचार करना भी हमारे लिए संभव नहीं है। काले जैसे व्यक्ति जितने इतना कष्ट दिया सबको, ऐसे व्यक्ति को क्या सौभाग्य प्राप्त हुआ कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का रज उसके सर पे प्राप्त हुआ। कस्यानुभावोऽस्य न देव विद्महे तवां ह्रियेण स्पर्शाधिकार है, यद वांछया श्री ललनाचर तपो विहाय कामान सुचिरं प्रणवता है। नाग पत्नियां कहती हैं भगवान श्री कृष्ण कि वैसे जो कालिया एक सांप है, सांप का शरीर ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होता है जो कि बहुत ईर्ष्यालु होता है। सांप एक प्राणी होता है जो बिना वजह किसी को डस देता है, बिना कारण। तो इसका मतलब है कि पूर्व जन्म में वो बहुत ईर्ष्यालु रहा होगा, इसलिए उसे सांप का शरीर मिला है। तो सांप का शरीर मिलने के बाद इसे ऐसी कृपा कैसे प्राप्त हुई जो कि लक्ष्मी देवी भी चाहती है और नहीं प्राप्त कर सकती है, ये हमारे समझ के बाहर है। और ये वास्तव में सबके समझ के बाहर है। ये है भगवान की कृपा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, अगर आप तर्क आदि का प्रयोग करना चाहते हैं, न्याय लॉजिक का प्रयोग करना चाहते हैं, तो इस वृत्ति को, इस तर्कवाद आदि को आप भगवान की कृपा के ऊपर केंद्रित कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए कि भगवान की कृपा कितनी होती है। फिर आपकी जो तर्क या वाद करने की जो प्रवृत्ति है, आपके न्याय सोचने की प्रवृत्ति है, वो सफल हो जाएगी। और सोचने से भी हम समझ नहीं पाएंगे कि भगवान की कृपा कितनी अपार होती है, और काल्य लीला से ये हम स्पष्ट हो जाता है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत कहते हैं कि कालिया वो अत्याचार धोखेबाजी के प्रतीक हैं। तो श्री कृष्ण अपने चरण कमलों से ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति का नाश कर देते हैं। और फिर आगे ब्रजवासीगण बहुत सुंदर बात कहते हैं, तो इस श्लोक को हम पढ़ेंगे। क्या कहते हैं उन्होंने उदाहरण दे दिए कि चलो कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत धारण कर लिया, इतने सारे असुरों का दमन किया, वध किया, तो अब निष्कर्ष क्या है, किस लिए सारे उदाहरण उन्होंने दिए हैं। अब आगे यहां कह रहे हैं ब्रजवासीगण, दुस्त्यजश्चानुरागोऽस्मिन् सर्वेषां नो व्रजौकसां नन्दते तनये स्मासु तस्याभ्युत्पत्ति कः कथम्। दुस्त्यजश्चानुरागोऽस्मिन् सर्वेषां नो व्रजौकसां नन्दते तनये स्मासु अस्याप्योपत्ति कह कथम आपके पुत्र के प्रति अपना निरंतर स्नेह त्याग नहीं पा रहे हैं और वे हम लोगों के प्रति स्वतः इतना आकृष्ट क्यों कर हैं। तो ब्रजवासी पूछना चाहते हैं कि ठीक है, ये बच्चा कौन है? ये तो बड़ी विडंबना, ये तो बड़ी समस्या है ये कि ये कौन है। इसने एक छोटा बालक होने के बावजूद भी इतने बड़े बड़े असुरों का वध किया, गोवर्धन को धारण किया, परंतु ये रहस्य भी बताइए कि हम इस बच्चे से इतना प्रेम क्यों करते हैं, और इतना ही नहीं, ये बच्चा हमसे इतना क्यों प्रेम करता है, क्या कारण है इसके पीछे, हम समझ नहीं पा रहे हैं। दुस्त्य जह मतलब जो बहुत जो असंभव है त्यागना, च अनुराग अस्मिन, तो इसके लिए जो हमारे मन में अनुराग है, जो आसक्ति है, जो प्रेम है, उसको त्यागना असंभव है। सर्वेशाम नह व्रजोकसाम, कि हम सबके लिए ऐसा है, हम सब जो ब्रजवासी हैं, व्रज ओकसाम इस वन में रहने वाले लोग हैं, हम सबकी समस्या ये है कि हमारे मन में जो श्री कृष्ण के प्रति अनुराग है, आसक्ति है, उसको हम त्याग ही नहीं सकते हैं। ऐसा क्यों? साधारणतः एक व्यक्ति, एक गृहस्थ अपने बच्चों से अधिक प्रेम करता है अन्यों के तुलना में। गृहस्थ सभी को प्रेम, सभी बच्चों को प्रेम करते हैं, लेकिन अपना बच्चा विशेष होता है। परंतु ब्रजवासी के लिए ऐसा नहीं था, वो कृष्ण को अपने बच्चों से ज्यादा प्रेम करते थे, और अगर वो सोचे भी कि कृष्ण को भूल जाए तो नहीं संभव था। वो आसक्ति बल्कि बढ़ती जाती थी। तो ये एक रहस्य था उनके लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि हमारी आसक्ति कृष्ण के प्रति त्यागना असंभव क्यों है। और दूसरी बात, नंद तेज तनय अस्मासु, और आपके तनय, आपके पुत्र के मन में जो आकर्षण और आसक्ति हमारे प्रति है, तस्यापि औत्पत्ति कह कथम, उसका जो प्रेम हमारे प्रति है वो भी औत्पत्ति कह मतलब स्वाभाविक प्रेम है, और कृष्ण भी इस प्रेम को त्याग नहीं पा रहे हैं, तो इसका क्या कारण है? ये जो परस्पर ये प्रेम है जिसकी वजह से हम दो बंधे हुए हैं, कृष्ण के प्रति और कृष्ण हमारे प्रति, ये क्यों हो रहा है, हम ये समझ नहीं पा रहे हैं। हे नंद महाराज, देखिए इस समय ब्रजवासी थोड़े एक संशय में है, कृष्ण भगवान है नहीं है क्या है, उनके मन में कुछ अभी ये मन विचलित है, कुछ स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है, लेकिन उनका प्रेम तो ये है, ये निश्चित है, इसके बारे में कोई संशय नहीं है कि इस प्रकार का प्रेम है, ऐसी आसक्ति है जिसको त्यागा नहीं जा सकता, इसके बारे में कोई दो मत किसी को नहीं थे। भले जो अन्य पहले के विषय थे उनमें दो मत थे, कोई ब्रजवासी कहता था ये नारायण के अवतार होंगे, कोई कहता था नहीं अवतार कैसे हो सकते, ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिला ऐसे, लेकिन इस बारे में कोई भिन्न मत नहीं, सबका मत एक ही है कि ये क्यों है कि हम कृष्ण को भूल नहीं पा रहे, और ऐसा क्यों है कि कृष्ण हमको भूल नहीं पा रहे हैं। तो ये वृंदावन की विशेषता है। श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि भक्ति के छह लक्षण होते हैं। आप बताइए भक्ति के कौन से छह लक्षण हैं? पहला लक्षण कौन सा है? क्लेशग्नि। क्लेशग्नि मतलब कि भक्ति की शुरुआत करने से जितने भी क्लेश हैं जीवन में वो खत्म हो जाते हैं। दूसरा शुभदा, मतलब भक्ति से सब मंगलमय परिस्थिति निर्माण हो जाता है, जीवन में मंगल आ जाता है। तीसरा मोक्ष लघुताकृत, जब हम भक्ति करने लगते हैं तो मोक्ष भी, भक्ति मोक्ष को लघुताकृत, मोक्ष को लघु बना देता है, मोक्ष को तुच्छ बना देता है, दो देती है। तो यह है भक्ति की शक्ति, तो यह तीसरा लक्षण भक्ति का। चौथा सुदुर्लभा, सुदुर्लभा मतलब बहुत ही दुर्लभ है ये भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करना ये आसान नहीं है। भगवान इंद्र तृप्ति तो आसानी से दे देंगे, अगर कोई उनके पास जाए पूछने के लिए कि मुझे धन दीजिए, इंद्र तृप्ति दीजिए, तो भगवान कृष्ण दे देंगे, चलो ले लो। मुक्ति चाहिए वो भी ले लो, भक्ति चाहिए हाँ थोड़ा विचार करना होगा, आसानी से नहीं देंगे, अगली बार आना, कल आना, परसों आना, अनुभव होता है ना, हम दफ्तरों में जाते कई बार, ये चाहिए हाँ कल आना, वो अवसर नहीं है, परसों आना, अच्छा एक हफ्ते बाद आना। तो भगवान के पास अन्य चीज मांगने से तुरंत सब कुछ मिल जाता है, भक्ति मांगने से तुरंत नहीं मिलता, क्यों ऐसे, क्या कारण है? क्योंकि भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं, भगवान अपने आप को बेच डालते हैं, भक्त के हवाले कर देते हैं, तो अपने आप को बेचने के पहले सोचना पड़ता है। दुकान का सामान बेच दे भले कोई किराए कोई कीमत चुकाने आ रहा है तो ठीक है, दुकानदार बेच देगा, कोई आदमी आएगा आपको ही खरीदना चाहते तो आदमी सोचेगा ना। तो भगवान देखते हैं कि ये तो मुझे खरीदने की शक्ति प्राप्त कर रहा है, तो मुझे सोचना पड़ेगा भक्ति देने के पहले। ये भक्ति बहुत गुह्य धन है भगवान का। और एक दूसरा उदाहरण, एक अमीर आदमी है, वो अपने कमाई से दान देता है, किसी गरीब को देता है, किसी और को देता है, तो अपने कमाई के पैसे को अवश्य वो दे डालेगा, लेकिन अनेक पीढ़ियों से जो कोई विशेष कोई धन है जो रखा हुआ, जैसे एक किरीट है कुछ है जो अनेक पीढ़ियों से रखा हुआ है, और उसको कभी वो त्यागेगा नहीं, उसको कभी नहीं देगा, उसको बड़े ख्याल से रखेगा अपने अलमारी में कहीं बहुत तिजोरी में अच्छी तरह से बंद करके रखेगा, लेकिन बाकी जो धन है वो दे देगा। तो उसी प्रकार से भगवान के तिजोरी में बहुत सारा धन है, सर ऐश्वर्य पूर्ण है भगवान, असीमित धन उनके पास है, तो जो धन है वो देने के लिए तैयार है। तुम्हें क्या चाहिए? एक स्वर्गलोक की प्राप्ति चाहिए? ले लो। तुम्हें एक राज्य का प्रभुत्व चाहिए? ले लो। लेकिन सबसे अनमोल धन भगवान की तिजोरी में कौन सा है? भक्ति का धन है। तो ये वो नहीं देंगे, जैसे यहाँ बेलगाम में बोलते हैं वल्लोपार्जित, जो अनेक पीढ़ियों से मिला है, तो वो धन है, वो इसको मैं नहीं दूंगा, इसको मैं बना के रखूंगा अपने पास, केवल गिने चुने व्यक्ति को मैं इसको दे दूंगा। तो सुदुर्लभा, इसलिए बहुत दुर्लभ है ऐसे भगवत प्रेम को प्राप्त करना। फिर पांचवा लक्षण कौन सा है? सांद्रानंद विशेष आत्मा, कि भगवान की भक्ति करने से ऐसे आनंद को प्राप्त होगा, ऐसे आनंद जो बहुत ही विशेष है, घना आनंद, सांद्र आनंद, सांद्र मतलब बहुत घना, और भक्ति का लक्षण ही है विशेष आत्मा। तो सांद्र आनंद, घना आनंद, केवल साधारण आनंद नहीं, घना आनंद, बहुत तीव्र आनंद। और छठा लक्षण कौन सा? श्री कृष्ण आकर्षणी। तो ये अंतिम लक्षण है कि जब व्यक्ति प्रेम भक्ति को प्राप्त होता है तब श्री कृष्ण आकृष्ट हो जाते हैं उस भक्त से। ये समय है, ये स्तर है भक्ति का, जब भक्त भगवान को खरीद लेता है अपने भक्ति से। तब तक हम भगवान को खरीद नहीं सकते जब तक हम उस स्तर को नहीं पहुंचते हैं। तो श्री कृष्ण आकर्षणी के सबसे अच्छे उदाहरण हैं कौन? ब्रजवासी। उनका प्रेम भगवान के प्रति इतना निर्मल था, इतना शुद्ध था, इतना तीव्र था, इतना मधुर था, इसलिए श्री कृष्ण आकर्षित हो गए। तो यहां पर ब्रजवासी दो प्रश्न करते हैं, एक कि हमारे मन में श्री कृष्ण के प्रति इतना आकर्षण क्यों है, और दूसरा श्री कृष्ण के मन में हमारे प्रति आकर्षण क्यों है। तो पहला प्रश्न या पहली बात दूसरे बात का कारण है, क्योंकि श्री कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं इसलिए श्री कृष्ण उनके प्रति इतने आकर्षित होते हैं, क्योंकि उनकी भक्ति इतनी शुद्ध है इसलिए श्री कृष्ण उनको भी नहीं भूल सकते। साधवो हृदय मह्यम साधुनाम हृदय स्वहम मत अन्यम ते न जानंती। तो भगवान कहते हैं दुर्वासा मुनि को कि साधुओं के अलावा मेरे हृदय में कोई स्थान नहीं है, और कोई नहीं है, मैं मेरे साधुओं के हृदय में निवास करता हूं और मेरे साधु मेरे हृदय में निवास करते हैं, मैं उनके अलावा कुछ जानता ही नहीं हूं। मत अन्य तेरा जानती तेभ्यो मां मना कभी, मैं उनके सिवाय कुछ नहीं जानता, वो मेरे सिवाय कुछ नहीं जानते। ये है संबंध भक्त और भगवान का, और ऐसे अवस्था में श्री कृष्ण आकर्षित हो जाते हैं। श्री कृष्ण आकर्षणी, इसलिए यहां पर ब्रजवासी अपने हृदय की बात को व्यक्त कर रहे हैं। वो श्री कृष्ण से इसलिए नहीं प्रेम करते हैं कि कृष्ण भगवान है, भगवान है भी नहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। ब्रजवासी श्री कृष्ण से प्रेम इसलिए करते हैं कि श्री कृष्ण सर्व आकर्षक है, उनके ऐसे गुण हैं जो कि श्री कृष्ण जो ब्रजवासियों को बांध के रखते हैं, और ऐसा प्रेम जो है ये भक्त को आकर्षित बनाता है। कौन आकर्षक हो सकता है? व्यक्ति यहां पर अपने आप को आकर्षित बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए तरह तरह के अच्छे वस्त्र पहनते हैं, कोई ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े या गहने पहनते हैं, या फिर तरह तरह की चीजें करते हैं, परंतु भगवान की दृष्टि से कौन ऐसे सुंदर व्यक्ति है? कौन सी चीज है जो भगवान को आकर्षित कर सकती है? हमारा शारीरिक सौंदर्य, हमारा शारीरिक बल, हमारी भौतिक बुद्धि, हमारा धन, हमारा घर, हमारी प्रसिद्धि समाज में, ये सब चीजें आकर्षित नहीं कर सकती भगवान को। भगवान भी सौंदर्य से आकर्षित होते हैं, लेकिन ये भौतिक सौंदर्य से नहीं, उनके मन में सौंदर्य की परिभाषा है प्रेम या भक्ति। जब किसी के हृदय में ये शुद्ध प्रेम रहता है तो भगवान की आंखों में वो व्यक्ति बहुत सुंदर बन जाता है और फिर भगवान ऐसे व्यक्ति से आकर्षित हो जाते हैं। तो सबसे आकर्षण करने वाली जो वस्तु है जो ब्रजवासियों में है जिससे कि कृष्ण आकर्षित हुए हैं वो है उनका प्रेम। इसे राग कहते हैं, राग भक्ति। संस्कृत में राग शब्द का अर्थ होता है तीव्र आसक्ति, जिससे कि एकाग्र चित्त से ब्रजवासी मग्न हो जाते हैं कृष्ण के विषय में, कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं सोचते हैं, 24 घंटे केवल कृष्ण का ही स्मरण होता है। यह राग की अवस्था। तो जिस भक्ति का सार ये राग है उसे रागात्मिक भक्ति कहते हैं। तो ब्रजवासियों का प्रेम, ब्रजवासियों की भक्ति यह रागात्मिका भक्ति कहलाती है। ऐसा श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं। जिस भक्ति का सार ये तीव्र आकर्षण है और एकाग्र चित्त से मग्न होना है श्री कृष्ण के अंदर, ऐसे भक्ति को रागात्मिका भक्ति कहते हैं। तो इसमें कोई नियम नहीं है, उनको कोई बताना ही पड़ता कि देखो चार नियम का पालन करो, देखो तुम कृष्ण के अंश हो, कृष्ण भगवान हैं, तुम कृष्ण के अंश हो इसलिए अंश की का कर्तव्य है पूर्ण की सेवा करना, तो चलो टीवी देखना बंद करो, सिनेमा जाना बंद करो, चलो अभी भगवान की सेवा करो, तो बताना नहीं पड़ता। स्वाभाविक रूप से ही ब्रजवासी कृष्ण को प्रेम करते हैं, किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती है कि आप कृष्ण से प्रेम करो, ये स्वाभाविक है। बल्कि उद्धव को आके बताना पड़ा कि नहीं करो प्रेम, इतना रो नहीं कृष्ण के लिए। और ब्रजवासी बहुत प्रयास करते हैं कि हम कृष्ण को भूल जाएं, लेकिन भूल नहीं पाते। हम लोग बहुत प्रयास करते हैं याद करें लेकिन याद नहीं रहते, मन से भगवान बहुत ही जल्दी चले जाते हैं क्योंकि दूसरे बहुत चीजें हैं हमारे मन के अंदर, अच्छा स्थान दिया हुआ है हमारे मन में अनेक चीजों के लिए, तो भगवान के लिए स्थान नहीं रह जाता। ब्रजवासियों की बात बिल्कुल उल्टी है। रूप गोस्वामी कहते हैं कि सबसे प्राथमिक अवस्था साधन भक्ति है, जिसमें हम कोई साधना करते हैं कृष्ण प्रेम के साध्य को प्राप्त करने के लिए। साधन भक्ति के भी दो भाग हैं, एक है वैधि भक्ति और दूसरा है रागानुग भक्ति। तो ये साधन भक्ति के दो भाग, वैधि और रागानुग। वैधि भक्ति मतलब वो भक्ति जो विधियों के अनुसार किया जाता है, रागानुग भक्ति भी विधियों के अनुसार किया जाता है, परंतु वैधि भक्ति में भगवान की सेवा करने की प्रेरणा मिलती है भगवान के दिए हुए शास्त्रों के आदेश के अनुसार। हम आज्ञाकारी हो जाते हैं और इसलिए हम भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, मंगल आरती में आते हैं, जप करते हैं, सब कुछ करते हैं। स्वाभाविक आकर्षण अभी तक भगवान के प्रति जागृत नहीं हुआ होता है। जब धीरे धीरे से ऐसे वैधि भक्ति करते करते हमारा आकर्षण बढ़ जाता है तो हम रागानुग भक्ति के स्तर में पहुंचते हैं। रागानुग भक्ति भी साधना भक्ति के अंतर्गत है, परंतु ये साधना जब हम करते हैं हम प्रेम से करते हैं, अपने आप करते हैं, स्वाभाविक प्रेम की वजह से करते हैं, किसी को बताना नहीं पड़ता। मंगल आरती में उठो, 16 माला जप करो, कृष्ण कथा सुनो, बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जब रागानुग भक्ति में और आगे हम चलते हैं तो अष्ट सात्विक विकार भाव प्रकट होने लगते हैं भक्ति के, और जब भक्ति तीव्र होती जाती है फिर हम प्रेमा भक्ति की अवस्था में पहुंचते हैं। तो प्रेमा भक्ति जो है ये सर्वोत्तम स्तर है भक्ति का। तो ब्रजवासी प्रेमा भक्ति के भी सर्वोच्च स्तर में स्थित है। इनसे ऊंची कोई भक्ति नहीं कर सकता। तो वो रागात्मिका है, और ये जो रागानुगा है वो राग या रागात्मिका भक्तों के पद चिन्हों में चलने वाले जो हो जो पथ है वो रागानुग कहलाता है। राग अनुग, अनुग मतलब अनुयायी, पथ में चलने वाले। तो रागानुग भक्त वो होते हैं जो रागात्मिका भक्तों के पद चिन्हों में चलते हैं, जो ब्रजवासियों के पद चिन्हों में चलते हैं, ये है रागानुग भक्ति। लेकिन ये कोई कृत्रिम तरह से नहीं किया जा सकता, ऐसे लोगों को प्राकृतिक सहजी कहते हैं। वृंदावन बहुत लोग ऐसे होते हैं, कच्ची अवस्था में ही अपने आप को सोचते हैं कि मैं ग्वाल बाल हूं, कोई सोचता मैं गाय हूं, कोई सोचता मैं मोर हूं, मोर की तरह से उड़ते हैं। ये सब भक्ति को सस्ता बना लेना है। केवल हम प्रभुपाद जी जैसे बताते हैं वैसे साधन करते रहेंगे तो क्रमशः हमारी प्रगति होती जाएगी भक्ति में, और एक दिन हम प्रेमा भक्ति की अवस्था को अवश्य प्राप्त करेंगे। तो ब्रजवासियों की स्थिति कितनी ऊंची है ये आप जरा सोचने, अब इसकी कल्पना कीजिए कि भगवान स्वयं उनके प्रेम से बंधे हुए हैं। तो इस प्रकार से आगे चल के भी, और इस बात को अपने मन से हटा नहीं पा रहे हैं कि अभी श्री कृष्ण ने ये पर्वत उठाया, फिर आगे बोलते हैं, क्व सप्तहायनो बालः क्व महाद्री विधारणम्। कहां ये सात साल का बच्चा, क्व महाद्री विधारणम्, और कहां ये विशाल पर्वत को धारण करना, दोनों में कोई संबंध है क्या? तो हो ही नहीं सकता। फिर भी ततः न जायते शंका व्रजनाथ तवात्मजे, इसलिए आपके पुत्र के बारे में हमें एक शंका है हे नंद महाराज, इसलिए कृपया इस शंका का आप निवारण कीजिए। तो फिर नंद महाराज ने कहा, श्रूयताम ये वचो गोपा व्ये तो शंका च वो अर्भके। तो मेरे अर्भक, मेरे पुत्र के बारे में जो संशय हैं उनके बारे में अभी आसा ध्यान से अभी सुन लो मैं जो कह रहा हूं। एनम कुमारम उद्दिश्य गर्भो में यद उवाच, इस कुमार, इस बच्चे के बारे में गर्ग मुनि ने मुझे नामकरण संस्कार के समय बहुत कुछ बताया था। तो क्या बताया था? उन्होंने यही बताया था, इसकी चर्चा तो हम पहले भी कर चुके हैं इसलिए अभी केवल संक्षेप में करेंगे। वर्णास्त्रय किलायासन गृहणतो नो युगम तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णकांकतः। गर्ग मुनि कहते हैं नंद महाराज को कृष्ण के नामकरण संस्कार के समय कि हे नंद महाराज, आपका पुत्र हर युग में प्रकट हो चुका है। जब सत्युग में आया था तो शुक्ल रंग का था, अर्थात सफेद रंग का। त्रेता युग में रक्त है, लाल रंग का। और अब कभी कलयुग में, कली में वो पीत रंग में आता है। और इदानीम इस समय द्वापर युग में कृष्ण काम करता है, तो कृष्ण वर्ण में आया है। और हर युग में वो ऐसे प्रकट होता है। और कभी कभी आपका ये पुत्र वासुदेव के पुत्र के रूप में आता है, इसलिए वसुदेव के पुत्र के रूप में आता है, इसलिए इसका नाम है वासुदेव। बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुकश्यते गुण कर्म अनुरूपाणी तान्येहं वेद नोजनः। बहुनी संति नामानि, आपके पुत्र के कई नाम हैं, बहुनी संति अनेक नाम, रूपाणी रूप भी अनेक हैं उसके, गुण कर्म अनुरूपाणी, और ये नाम जो होते हैं ये उनके अलग अलग गुण और रूपों के आधार पर दिए जाते हैं। एष वह श्रेय आधास्य गोप गोकुल नंदन अनेन सर्व दुर्गाणि यूयम अंजस करिष्यथ। आप सबके नंद महाराज और आप सब अन्य जो गोप हैं, आप सबके दिव्य आनंद को बढ़ाने के लिए यह बच्चा आपके कुल में अब जन्म ले रहा है। तो कृष्ण भगवान का यहां गोकुल में जन्म लेने का कारण क्या था? कि गोकुल के निवासियों को आनंद प्रदान करना, इसलिए उनका नाम है गोकुलानंद, जो गोकुल के निवासियों को आनंद प्रदान करते हैं। साथ साथ में गोकुल के निवासियों के बीच में रहकर खुद भी आनंद का अनुभव करते हैं। और यहां वो कहते हैं अनेन सर्व दुर्गाणि यूयम अंजस तनिष्यथ, कि इस बालक की वजह से सर्व दुर्गाणि जितने भी कष्ट आएंगे उनको हम पार कर पाओगे इस बच्चे की कृपा से। तो भविष्यवाणी कर दी गर्ग मुनि ने। भगवत गीता में जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मच्चितः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यति, कि हे अर्जुन मेरी कृपा से मत प्रसादात् तरिष्यति तुम तैर पाओगे। क्या चीज, क्या तैर पाओगे? सर्व दुर्गाणि मच्चितः, केवल कृष्ण भावना भावित बनोगे तो सारे समस्याओं को तुम पार कर पाओगे। परंतु अथ चेत् त्वम् अहंकारं न शोष्यसि विनक्ष्यसि, अगर अहंकार की वजह से तुमने मेरी बात नहीं सुनी है अर्जुन तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। तो इस प्रकार से ब्रजवासीगण इस बात को अच्छी तरह से जानते थे, उनको बताने की आवश्यकता नहीं थी, स्वाभाविक रूप से वो कृष्ण के पास ही जाते थे और कृष्ण हर बार उनको इन समस्याओं के पार कर देते थे। तो हे नंद महाराज, इतिहास में ऐसा वर्णन है कि जब कोई दुष्ट राजा हुआ करता था और इंद्र अपने पद से निकाले जाते थे, या तो फिर जब अच्छे लोगों को हैरान किया जाता था तो ये बच्चा अवतार लेता था, प्रकट हो जाता था दुष्टों का विनाश करने के लिए और अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए। तो जो असुर होते हैं वो देवताओं को हानि नहीं पहुंचा सकते क्योंकि देवताओं के पास भगवान होते हैं, विष्णु होते हैं। तो उसी प्रकार से जो व्यक्ति इस श्री कृष्ण से आसक्त है, इस बालक के पक्ष में है, उसको कभी किसी चीज के बारे में डरने की आवश्यकता नहीं होगी। यत्र योगेश्वर है कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयोभूति ध्रुवानीति मतिर्मम। तो जो श्री कृष्ण के पक्ष में है उसके लिए श्री विजय नीति आदि निश्चित है। तो इसलिए फिर गर्ग मुनि ने नंद महाराज से कहा तस्मान नंद कुमारोयम नारायण समो गुणैहि, कि इसलिए आप जान लो कि आपका ये जो बालक है नारायण समह है, नारायण के समान ही है, उसके अंदर जो गुण है वो बिल्कुल नारायण के समान है। जानबूझकर गर्ग मुनि ने यह नहीं कहा कि आपका बच्चा नारायण का ही उद्गम है, ये तो महानारायण है। नारायण तो आपके बच्चे के अंश हैं, कला हैं, आपके बच्चे भी नारायण के ही उद्गम हैं। ये नहीं बताया कि फिर लीला कैसे होती, ये बताया नारायण समह, नारायण के समान ही आपके बच्चे के अंदर गुण हैं। इसलिए अगर वो ऐसे कोई अद्भुत कार्य करता है तो आपको आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। तो फिर नंद महाराज अभी गोपों से कह रहे हैं कि जब गर्ग ऋषि ने ऐसे मुझे बातें कही कृष्ण के बारे में तो मैं घर लौट आया और मैं थोड़ा गौर से सोचने लगा और फिर मैंने सोचा कि हाँ, ये बच्चा कृष्ण जो है, जो कि हमें हमेशा कष्टों से दूर रखता है, ये भगवान नारायण के ही कोई विस्तार होंगे। तो इस प्रकार से नंद महाराज से ये बातें सुनकर ब्रजवासियों के मन में जो भी शंकाएं थीं वो सब खत्म हो गई और बड़े शांत चित्त से हसमुख चेहरे से वो अपने अपने घर में चले गए। नंद महाराज का आदर सत्कार किया उन्होंने, तरह तरह के भेंट अर्पण किए और फिर वापस चले गए। तो इस अध्याय के अंत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने कि इंद्र के मान का भंग कर दिया, प्रियान्न इंद्र गावाम, वो श्री कृष्ण हमारे ऊपर प्रसन्न रहें, हमारे ऊपर कृपा करें। तो ऐसे एक आशीर्वचन, का उच्चारण करके सुखदेव गोस्वामी इस श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध के 26वें अध्याय को समाप्त करते हैं। लेकिन गोवर्धन लीला की का वर्णन यहाँ समाप्त नहीं हुआ, केवल इस वर्ष के लिए समाप्त हुआ। अगले वर्ष बलराम जयंती और जन्माष्टमी के बीच में ये जो अंतिम अध्याय रह गया है इसकी चर्चा होगी कि इंद्र और माता सुरभि भगवान के पास आते हैं उनकी स्तुति करने के लिए, क्षमा याचना करने के लिए। इंद्रदेव को पश्चाताप होता है, डर होता है कि अब श्री कृष्ण के हाथों से मैं दंडित हो जाऊंगा, तो श्री कृष्ण सुरभि माता को लेकर आते हैं कृष्ण के पास। माता गो माता को सामने रखते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि गाय भगवान कृष्ण के बहुत प्रिय हैं, तो गाय को सामने रखते हैं जिससे कि कृष्ण का क्रोध न हो, और फिर वो कृष्ण के पास आके कृपा याचना करते हैं। तो किस प्रकार से इंद्र आते हैं, उनकी प्रार्थना क्या है, भगवान कृष्ण क्या उत्तर देते हैं, आप अगर जानना चाहें सबसे अच्छा तरीका है आप प्रभुपाद की इस किताब को पढ़िए, और अगर किसी कारण से आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, तो एक साल इंतजार कीजिए। आशा करते हैं कि आप दोनों चीजें करेंगे। गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय, श्री गिरिधारी भगवान की जय, गौर प्रेमानंदे। तो कोई प्रश्न है आपके तो आप पूछ सकते हैं।